When you look at the Philippines today, I think it's very, very, very critical currently. फिलीपींस को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उधर जो चुनाव हुई है वो काफी क्रिटिकल मुद्दों को हमारे सामने पेश किया है। इन मुद्दों को हम दो तरीकों से देख सकते हैं। एक है जो इंटरनल या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के दायरे में हम, और दूसरा है कि जो रीजनल स्टेबिलिटी के ओर से इनकी इम्प्लीकेशंस देख सकते हैं। अभी जो चुनाव में प्रेसिडेंट इलेक्ट चुने गए हैं उनका नाम है रोड्रिगो ड्यूटेर्टो, और वो काफी कंट्रोवर्शियल फिगर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे दवाओ सिटी के वो मेयर रह चुके हैं करीब 20 साल के लिए, 20-22 साल के लिए। और जो मेजर्स उन्होंने वहां अपनाया है उस जगह पे वो काफी डिबेटेबल मेजर्स हैं, पर्टिकुलरली इन लाइट ऑफ द काइंड ऑफ लॉ एनफोर्समेंट ही डिड इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग द क्राइम्स दैट वर देयर इन द दवाओ सिटी। एंड दो ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही मे हैव इरेडिकेटेड द क्राइम्स विद इन द सिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट ओवर द काइंड ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स दैट हैव टेकन प्लेस अंडर हिज लीडरशिप देयर। जो उनकी स्टेटमेंट से भी लोग ये सोच रहे हैं कि वो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहेंगे, बिकॉज हिज स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली वेरी 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 हार्श, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स नेबरिंग कंट्रीज, द काइंड ऑफ स्टेटमेंट ही इज मेड टुवर्ड्स डीलिंग विद क्राइम एंड करप्शन इनसाइड द डोमेस्टिक सिनेरियो इटसेल्फ। सो ऑन ऑल दीज मेजर्स व्हाट यू आर सीइंग इज अ वेरी वेरी टफ पर्सनैलिटी एंड अ रादर कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी इफ आई मे से दैट।
प्रोफेसर सुंदर रामन, जो दूसरा सवाल था हमारा वो ये था कि उनके चुने जाने से जो एशिया क्षेत्र है उसका जो जियोपॉलिटिक्स है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खास तौर से क्योंकि साउथ चाइना सी को लेकर जो है वहां पर काफी विवाद चल रहा है, तो और चीन भी उसमें शामिल है, तो उसको लेकर क्या क्या हो सकता है?
देखिए, अभी जैसे मैं कह रही थी, इस चुनाव से मेरे तरह से तो दो नजर से आप देख सकते हैं। एक तो इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जहां तक की सेकंड आपकी क्वेश्चन है वो है इन टर्म्स ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स पे इसकी क्या असर हो सकती है। जैसे अभी साउथ ईस्ट एशिया में जो समस्याएं हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं, क्योंकि दोनों तरह से माने यूएस उस रीजन में जो हम देख रहे हैं ये है कि चाइना इज राइजिंग एज अ सुपर पावर। साइमल्टेनियसली देर इज ऑल्सो वॉट इज कॉल्ड द रीबैलेंसिंग स्ट्रेटेजी दैट इज टेकिंग प्लेस विद द यूएस पॉलिसी अंडर प्रेसिडेंट ओबामा, विच इज ऑल्सो बींग नोन एज द पिवट टू एशिया स्ट्रेटेजी। फॉरेन रिलेशन पे उनकी जो स्टेटमेंट्स आए हैं काफी कठोर स्टेटमेंट्स आए हैं। जैसे अभी जो रीजनल जियोपॉलिटिक्स साउथ ईस्ट एशिया में है, उधर दोनों मेजर पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की प्रभाव पड़ रही है, और इस प्रभाव के कारण हम अभी देख रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में एक काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी डिलेमा आ गया है, कि ये जो रीजन है आसियान कंट्रीज की जो रीजन है, आसियान कंट्रीज एक्चुअली स्ट्रैटेजिकली काफी वल्नरेबल रहते हैं। उनके पास इतनी शक्ति नहीं कि वो ऐसे मेजर पावर्स के सामने कंटेस्ट कर सकते हैं। तो आसियान जो रीजनलिज्म होता है उस रीजनलिज्म के डिपेंडेंट है, दे हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू प्रोजेक्ट देयर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। Now, because the rise of China and the US rebalancing is taking place, you see that the ASEAN is actually now almost divided, and the centrality question of ASEAN is under a lot of concern. And इस समय फिलीपींस के जो अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट है वो कह रहे हैं कि उनकी जो the type of what you call negotiations that he will carry out are likely to be different from what the ASEAN is likely to opt for. For example, the ASEAN has always, to give you an example, the ASEAN has always spoken about a multilateral approach to resolving the South China Sea issue. For the first time, you see that this president-elect, Mr. Rodrigo Duterte, is actually saying that he will agree to a bilateral kind of a negotiation with the Chinese. And this is what the Chinese have always been clamoring for in terms of how they want to resolve the South China Sea dispute, purely in terms of a bilateral approach. And this is the first time you're seeing that the Philippines has always supported what the ASEAN has said. And in fact, from 2012 onwards, the Philippines has actually been one of the most vocal proponents of following an ASEAN mechanism in order to resolve the South China Sea issue. But with this kind of statement that he will move away from that approach, there is a view that, you know, you may be ruffling up regional feathers as a result of your policy of willing to move into bilateral space negotiations.
जी, एक आखरी सवाल प्रोफेसर सुंदर रामन की ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि इन्होंने चुनाव के पहले भी ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में कुछ कड़ी टिप्पणी की है, तो उस संदर्भ में इन दोनों देशों के बीच रिश्ते आप कहाँ पे देखती हैं और कहाँ हो सकते हैं भविष्य में?
You know, if you look at the 2012 Asian Century White Paper, the Australian White 2012 very categorically stated that the Southeast Asian region is one of their top priorities. Now, to bring another matter, I think the 2016 Defense White Paper also notes that the Philippines is going to be one of its most important neighbors, both in terms of its strategic location and in terms of issues related to maritime security.
Mm-hmm.
Now, given these two factors, I think Australia will have to be very clear that it is going to engage with whoever is the leader in power in the Philippines. That is the first point. The second point is that I think some of the statements that President Duterte had made, especially that related to the, you know, there's an Australian missionary who was killed in a prison riot. Now, she was raped and then she was murdered. Now, the kind of statements that the president has made are absolutely shocking. And the sensitivities have to be kept in mind, especially on foreign relation matters, where if you have a Australian citizen, for example, killed in a murder and a rape crime, the kind of statements cannot be insensitive. And I think a lot of the perceptions around President Duterte come from this fact that he just shoots his mouth off on some of these issues. And I think, you know, it's very important for another statement that he made very recently was that if the Australians and the US find it difficult, then he can end the kind of diplomatic relations that Philippines has with these two countries. Now, if you look at those kind of statements and pronouncements, I think these in statements say jo regional relations hai aur jo foreign relations hai unpe kafi kafi kathor prabhav pad sakta hai, kafi tough implications ho sakte hain. So in jaise statements ko unko, there is no doubt that he has to reduce such statements and focus more on, you know, being more open towards the kind of regionalism that has shaped the region in the last, say, 10 years or so.